اب دیکھتے ہیں کچھ سوالات کی صورت میں ذہنوں کے اندر توحید کو راسخ کیا جا رہا ہے. آیت 38, وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اور اگر آپ ان سے سوال کریں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو, کون کس سے کرے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارد گرد کے مشرکوں سے کر لیں, اور میں اور آپ آج کے دور کے ایتھیسٹوں سے کر لیں, یا جو اللہ کو نہیں مانتے, یا جو عبادت کی حد تک اللہ کی مانتے ہیں لیکن اطاعت نہیں کرتے, زندگی کے جینے مرنے میں اس سے نہیں پوچھتے. تو پوچھو کس نے پیدا کیا آسمان کو؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو وہ یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا. یہ ہے توحید ربوبیت, اس کا منکر دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. یہ ہے وہ وعدہ جو ہماری فطرت میں گندا ہوا ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا, کریٹر گاڈ کو سب مانتے ہیں. خیر, اور 20ویں پارے کا پہلا پورا رکوع اسی تھیم پہ تھا, آپ کو یاد ہونا چاہیے. خیر, پھر ان سے پوچھئے, قل افرائیتم ما تدون من دون اللہ, تو ان سے کہیے ذرا غور تو کرو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. ان ارادنی اللہ بدر, اگر اللہ نے میرے لیے کسی تکلیف کا فیصلہ کر لیا ہے, حل ہن کا شفات در, ہی کیا ہیں یہ تمہاری دیویاں دور کرنے والیاں ان تکلیفوں کو. یہ سب مؤنث ہے, ہن کا شفات, کیونکہ ان کے جتنے بھی بت تھے نا عموماً فیمیل بت تھے, فیمینن تھے. اللہ کہتے ہیں ان دیویوں کو پوچھو. اس کے پیچھے بات کیا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ کو تو مانتے تھے, کیا کہتے تھے, سب سے بڑا وہی ہے, اوپر والا وہ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ چھوٹے چھوٹے معبود بناتے تھے تاکہ وہ اللہ کی مدد کریں. تو یہاں ایک سوال عقل کو جھنجھوڑنے والا کیا گیا کہ جب اللہ جو سب سے بڑا اس کا حکم چلتا ہے تو یہ چھوٹے اپنی مرضی سے کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے, مثال ہے کہ اللہ میرے اس وقت سر میں درد کرنا چاہتا ہے, تو تمہاری یہ دیویاں میری یہ درد ٹھیک کر سکتی ہیں؟ تکلیف نہیں دے سکتا کوئی. اسی طرح او ارادنی برحمت, اور اگر اس نے میرے لیے رحمت کا کوئی ارادہ کیا ہو, حل ہن ممسکات رحمتی, ہی تو کوئی ہے جو اس کی رحمت کو روک سکے؟ جیسے اللہ نے نبوت کا ارادہ کر لیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے, تمہارے سارے معبودوں کو ملاؤ اور میرے سے نبوت چھین لو. اللہ نے مجھے قرآن دینے کا ارادہ کیا, تم مجھ سے چھین کے دیکھو. اللہ نے مجھے اولاد دینے کا ارادہ کیا, چھین کے دیکھ لو, ہے کوئی؟ تو قل حسبی اللہ, کہہ دیجئے کہ پھر اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون, پھر اسی پر تو چاہیے کہ توکل کرنے والے توکل کریں. پھر توکل کی بات آ گئی ہے, کیسے اللہ توحید کی ڈوریوں کو پھروتا ہے توکل کے ساتھ. جتنا زیادہ اللہ پر نظریں ہوں گی اتنا اللہ تعالیٰ کی توحید سمجھ آئے گی, اور جتنی توحید سمجھ آئے گی اتنا توکل سمجھ آئے گا. دیکھیے بہت آسان ہے, توحید اور توکل کا ربط سمجھ لیجئے. صرف سمجھانے کی غرض کہوں گی, آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں بہت امیر ہیں, آپ کو اس کا یقین جب ہوگا, آپ کے بھائی ہیں مثال لے لیں, آپ کو تو بہت امیر ہیں اور آپ سے پیار بھی بہت کرتے ہیں, کسی وقت اگر آپ کی ضرورت ہوئی کوئی تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ نو پرابلم, بھائی سے مانگوں گی دے دیں گے, مانگنے کی کیا بات ہے, ان کو پتا چل گیا بن مانگے بھی دے دیں گے, ایسے ہی کہیں گے نا آپ. ہوا کیا کہ آپ کو بھائی کی دولت کا یقین تھا نا, تو آپ نے سوچا نو پرابلم, اگر خدا نہ خاصا ضرورت پڑی تو بھائی دے دیں گے. اب ایک طرف سوچئے دوسری مثال, آپ کو ابھی یقین ہی نہیں کہ آپ کے بھائی کے پاس بھی کچھ ہے کہ نہیں, پتہ نہیں ان کے حالات کیا ہیں, ان کے بینک میں کتنا ہے, پتہ نہیں اوپر سے ہی بس کام بنا ہوا ہے, اندر ان کے حالات بھی. اب جب آپ کو ان کی دولت اور ان کی قدرت کا احساس کم ہے, یقین نہیں, تو کبھی آپ کو ضرورت پڑی تو آپ اسی دھڑلے سے مانگ سکیں گی؟ کہیں گے پتہ نہیں میں مانگ تو لوں پر بیچارے کے پاس ہوا ہی نہ تو کیا کرے گا, پتہ نہیں میں تو ان پہ نظریں لگا رہی ہوں وہ میرا یہ کام کر ہی نہ سکے. چلے پیسوں کو چھوڑیے, کوئی کام ہی کرانا ہے آپ نے کسی سے, وہ کر دیں گے, وہ چلا جائے گا, وہ لے آئے گا, وہ دے دے گا. کب کرتے ہیں؟ جب یقین ہوتا ہے. اب اس مثال کو اللہ تعالیٰ پہ لے لیجئے, اللہ سے وہی مانگے گا جس کو اللہ کی قدرت کا یقین ہے. اللہ پہ نظریں صرف وہی لگائے گا جس کو اللہ کی قدرتوں اور اس کی وسعتوں کا یقین ہے, اور یہ یقین بندے کے دل میں پتھر کی طرح رچ جاتا ہے. اس کو مان لیں اللہ سے ان 5-6 سپاروں میں جو رہ گئے, کہ اللہ میرے دل کو ٹھکا دے, میرے دل میں تیری بڑائی, تیری قدرت, تیرا ان اللہ علی کل شیء قدیر ہونا اس طرح جم جائے کہ میں ادھر دیکھوں نہ ادھر دیکھوں, سیدھا دیکھ کر چلتی جاؤں, اور آپ کو یقین ہونا کہ آپ کا بڑا کوئی پیارا بہت اس کے پاس مال ہے. چلیں سب کو چھوڑیں, شوہر کی بات لیتے ہیں کیونکہ اس پہ تو براہ راست آپ کا حق بھی ہوتا ہے, ارمان ہے. आपके शौहर के पास बहुत है, आपको यकीन है जो जरूरत पड़ी वो दे भी देंगे, मोहब्बत भी करते हैं, मना भी नहीं करते, खुशी खुशी महसूस करते हैं ना अंदर कि चलो जी अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने इनको अच्छी जॉब दी हुई है, इनके पास माल है, ये मेरी जरूरत समझ जाएंगे। अब आप इस चीज को लें कि वो जो अंदर की खुशी है कि आपके शौहर के पास माल है और वो आपकी जरूरियात पूरी करेंगे, आप इस खुशी को एक अल्लाह की कुदरत पे जरा कयास करके देखें, आपको पता है ना मेरा अल्लाह मेरे पास है ना, वो मेरे ऊपर मेरे साथ, तो मुझे किसी की क्या जरूरत है। अब आप शौहर के होते हुए शौहर के भाई से कुछ उम्मीद लगाएंगे, शौहर के दोस्त से उम्मीद लगाएंगे, तो फिर शिर्क हो कैसे सकता है अगर आपको अल्लाह की कुदरत का यकीन है और इन देवियों और इन बाबों और आमिलों का यकीन है। उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन वही लोग ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनको अल्लाह की कुदरत नहीं। आगे आयत आ रही है कि वमा कदरुल्लाह हक्का कदरी, वजह ही ये है अल्लाह की बड़ाई को ना मानने की कि इंसान अल्लाह ताला को बड़ा नहीं जानता और इस तरह से पीछे हो जाता है। और ये वो चीजें हैं कि जिसके लिए 13 साल मक्का में अल्लाह के नबी ने मेहनत की थी। आप ये जो कहते हैं ना कि जल्दी से तौहीद आ जाए, कुर्बानियां करें, लोग ये करें, ये इतने काम है करने वाले, कहां से शुरू करो? एक अल्लाह की कुदरत पे यकीन करने से शुरू कर दें। इस चाबी को आपने पकड़ लिया तो बाकी सब नेकियों की चाबियां आपके हाथ में आ जाएंगी। ये मेन डोर है, इसमें कमी हमसे गुनाह कराती है। देखिए ना, बंदा डरता किससे है? पैसे वाले से डरता है, अल्लाह पैसे वाला है। बंदा किससे डरता है? अथॉरिटी वाले से डरता है, अल्लाह अथॉरिटी वाला है। बंदा किससे डरता है, किसकी इज्जत करता है, किससे प्यार करता है? जिसके पास कुछ है, या रोब है, या दबदबा है, या उसकी पकड़ का डर है, अल्लाह के पास ये सब कुछ है। अल्लाह का हार भी है, अल्लाह जब्बार भी है। यानी एक तरफ उसकी नेमतें बहुत अच्छी हैं और एक तरफ उसकी पकड़ है, इसके बावजूद हम नहीं डर रहे, तो मतलब क्या है कि अभी अल्लाह की वो कदर नहीं जानी। पुलिसमैन की थोड़ी सी अथॉरिटी का यकीन होता है तो सीट बेल्ट डालते हैं ना, ट्रैफिक लाइट पे रुक जाते हैं और स्पीड कम कर लेते हैं। ये कैसे हो सकता है कि आपको पता भी है कि 70-80 पाउंड का टिकट आ जाएगा और आप फिर भी सीट बेल्ट ना बांधें? रात के अंधेरों में जा रहे हैं, अकेले में जा रहे हैं, सीट बेल्ट बांधी हुई, खुद को मुश्किल में डाला हुआ है। अकल से पूछें तो सीट बेल्ट बांध ली तो खुदा ना आस्ता गाड़ी में आग लग गई तो निकलना मुश्किल होगा, लेकिन वो कहते हैं बांधो कि अगर कुछ हो गया तो तुम्हें चोट ना लगे, तो कर रहे हैं। फायदा हो ना हो, बस कर रहे हैं तो कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह ताला अगली आयतों में देखिए हम सबको अब तौहीद को चेक करने के लिए कुछ दलाइल दिखा रहे हैं कि देखो मैं क्या कुछ करता हूं। पहले बीच में एक दफा अल्लाह के नबी की जुबान से कहलवा दिया, कुल या कौमे मिलू अला मकानतिकुम, आप कहिए मेरी कौम के लोगों तुम अपनी जगह पर कर लो जो करना है। मैं और आप कह सकते हैं लोगों को, सोसाइटी को, रिश्तेदारों को, सहेलियों को, दोस्तों को, जाओ भाई तुमने जो मेरे खिलाफ करना है कर लो, लेकिन इन्नी आमिल, मैं आमिल हूं। कौन सा आमिल? नाउज बिल आमिल नजूमी, जो शैतानों को खुश करते हैं और नाचते कूदते हैं? नहीं, अमल करने वाला, मेहनत करने वाला। फसौफ तालमून, अन करीब तुमको पता लग जाएगा। क्या पता लग जाएगा? ये पता लग जाएगा कि मैं याती ही अजाब यहजी ही, कौन है जिस पर आता है वो अजाब जो उसको रुस्वा कर देगा। रुस्वा कुन अजाब किस पे आएगा? वह यहल्लू अलैहि अजाब मुकीम, और इस पर वो अजाब नाजिल हो जाएगा जो हमेशा रहने वाला होगा। आज तुम मेरे मुल्क थे, आज तुम मुझे अल्लाह का नबी नहीं मानते, कल तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारे साथ होना क्या है। हर दौर का दाई दीन भी यही बात लोगों के सामने रखता है कि आज तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती, कल तुम्हें समझ आएगी। इसीलिए फरमाया कि तुम अपनी फिक्र कर लो, मेरी फिक्र ना करो। और नबी की बात आई तो साथ ही किताब की बात आ गई, इन नंजल ना अलई कल किताब अल नासिविल हक, ए नबी हमने आप पर यह किताब नाजिल कर दी लोगों के लिए हक के साथ। इस जुमले में कितनी खूबसूरती है, किताब नाजिल आप पर हुई लेकिन हुई लोगों के लिए। अंडरस्टैंड करें, यू शुड कन्वे द मैसेज। ये किताब अपने पास रखने वाली नहीं है, है बिल हक, सच्ची किताब है। आप इसको अपने ऊपर लें, आप ये कोर्स कर रहे हैं, कुरान सीख रहे हैं, तर्जमा याद कर रहे हैं, तफसीर सुन रहे हैं, व्हाट्सएप, नेमत आपको मिल रही है, लेकिन है ये आपके करीबी लोगों के लिए। आपको यकीन दिलाया जा रहा है कि ये बिल हक, ये सच्ची किताब है। अब इसके बाद दो रास्ते हैं, फमन इहतदा फली नफसी ही, बस जो कोई हिदायत का रास्ता इख्तियार करता है तो अपने ही भले के लिए करता है। वमन दल फइन नमा यदिल्लु अलैहा, और जो कोई गुमराही इख्तियार करता है तो इसका वबाल तो इसी पर आएगा। वमन तालैहिम बिवकील, और आप इनके जिम्मेदार नहीं है। ان کے برے انجام کے جواب دہ آپ نہیں ہیں. آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ ابو جہل مسلمان کیوں نہیں ہوا, عتبہ کیوں نہیں ہوا, ربیعہ کیوں نہیں ہوا, ولید بن مغیرہ کیوں نہیں ہوا, آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ کا کام کیا ہے؟ وما علینا الا البلاغ المبین, بس بات پہنچانے کی ہے. وہ لیٹر انہوں نے کھولا کہ نہیں, ہدایت کے لیٹر پہ سائن جو کیے تھے کہ نہیں کیے تھے, ان کی مرضی ہے, آپ اپنے اوپر رہیں, آپ اس کی فکر نہ کریں. یہی مزاج آج ہمارا بھی ہونا چاہیے. آواز میں سختی نہیں, نرمی کے ساتھ یہ بات ہونی چاہیے کہ ٹھیک ہے بات تم نے پہنچا دی, اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو نہ ستائیں تو ہمیں بتا دیجیے, ہم نہیں ستائیں گے. بعض لوگ تو منہ سے کہہ دیتے ہیں نا, ہمیں نہ کہا کرو, ہمیں نہ بلایا کرو, تو ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے, ڈونٹ وری. بس آپ ہمیں ایک دفعہ یہ بتا دیں کہ ذمہ داری پوری ہو گئی, حجت تمام ہو گئی. اسی لیے جب کبھی کوئی آپ کو منہ سے کہہ دینا کہ مجھے نہ بلایا کرو, مجھے نہ بتانا, تو پھر نہیں بتائیں, پھر ان کو ذرا خاموشی کی مار مارے. ہو سکتا ہے کہ پھر ان کو اس چیز کا گلٹ ہو جائے کہ پہلے تو بلاتے تھے, اب تو بلاتے بھی کوئی نہیں, اب تو ذکر ہی نہیں کرتے اس بات کا. تو انسان جو ہے نا, یہ پتھر نہیں ہے, اس کے اندر بڑی رقت ہے, نرمی سے اندر سے کچھ چیزیں نکلتی ہیں, اس لیے اس ساری چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا. اب اگلی آیات میں آپ دیکھیں گے کہ توحید کی نشانیاں, صرف تھاٹ پر بکنگ, سوچو غور کرو کس رب کے بندے ہو, کس کی کتاب پڑھ رہے ہو, اس کی کیا قدرتیں, اور یہ ساری چیزیں, یعنی آیت نمبر 42 سے لے کے 52 تک 10 آیتوں میں آپ دیکھیں گے اللہ کی قدرت اور انسانوں کے رویے. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, اللہ قبض کر لیتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت. سوچئے ابھی ہم سب تھوڑی دیر پہلے موت کے منہ سے نکلے ہیں, رات کو جب سوتے ہیں نا تو مر جاتے ہیں. والتی لم تمت فی منامہا, اور جن کی موت نہیں آئی ہوتی ان کو بھی ان کی نیند کی حالت میں. یہ جو لفظ ہے نا یتوفا, و فا یا اس کا مادہ, پیچھے بھی اس پہ بات ہوئی تھی, باب تفاعل سے آیا ادھر. اس کا معنی کہتا ہے کسی چیز کو پورا پورا قبضے میں لینا. بالکل یہی لفظ سورۃ آل عمران آیت 55 میں حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال ہوئے تھے, یاد ہے, انی متوفی کا ورافیو کا الیہ, بڑی لمبی بات ہو گئی تھی اس پہ, یاد ہوگا آپ کو, وہی لفظ ہے. پورا لینا, جسم اور روح کے ساتھ, دونوں کے ساتھ اللہ نے عیسیٰ کو وہاں رکھ لیا تھا. تو قرآن پاک میں یہ لفظ جب بھی آتا ہے تو اس میں بہت زیادہ شدت پائی جاتی ہے, اور یہاں پتہ چلا کہ نیند کی کیفیت میں انسان کا فہم, شعور, اختیار اور ارادہ سلب کر لیا جاتا ہے. چار چیزیں لکھ لیں, انسان کا فہم ختم ہو جاتا ہے, ہم سوچتے نہیں, انڈرسٹینڈنگ ختم ہو جاتی ہے, شعور ختم ہو جاتا ہے, بعض لوگ نیند میں بڑبڑاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کیا کہہ رہے ہیں, اس طرح اختیار, چوائس ختم ہو گئی نا, آپ اٹھ نہیں سکتے, نیند میں بعض لوگ گر بھی جاتے ہیں, ان کے پاس چوائس نہیں ہوتی, جب آنکھ کھلتی ہے تو پتہ چلتا ہے. اسی طرح ارادہ, ہم کوئی ارادے نہیں کرتے. لیکن پانچویں چیز روح, یہ موجود رہتی ہے, یعنی روح کی ڈوری موجود ہے, جبکہ موت کی حالت میں روح اور شعور دونوں چلے جاتے ہیں. اب یہ لکھ لیجئے کہ انسان کے جسم میں یہ جو قدرتیں ہیں نا, قوتیں ہیں مختلف, فہم, شعور, اختیار, ارادہ, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو چلی جائیں تو واپس آ جاتی ہیں, لیکن روح ایک دفعہ چلی گئی جسم سے تو واپس نہیں آئے گی. ہم نے سورہ نحل میں اس کو ڈیٹیل سے دیکھا تھا, وہاں دونوں کا تذکرہ تھا. نیند کی صورت میں ہمارے جسم میں سے وہ روح جو جا کے واپس آتی ہے نا, وہ نکلتی ہے صرف, اور اس کے نکلنے کی وجہ سے فہم و شعور, ارادے اور اختیار سب ختم ہو جاتے ہیں, ہوش نہیں رہتا. لیکن دوسری روح جو نکل جائے تو واپس نہیں آتی, جس کو ہم موت کی صورت میں دیکھتے ہیں کہ نکل جاتی ہے جسم سے, وہ موت کی صورت میں وہ بھی چلی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات کر کے بتا دیا, فَيُمْسِكُ الَّتِي قَدَ عَلَيْهَا الْمَوْتِ, تو جس کی موت کا وہ فیصلہ کر چکا ہوتا ہے اس کو اپنے پاس روک کے رکھتا ہے. یعنی کچھ لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, رات کو سوئے اور پھر کبھی نہ اٹھے. سچ بتائیں, بالکل شعور کو سامنے رکھتے ہوئے رات کو بستر پہ لیٹتے ہوئے خیال آتا ہے کہ واپس جاؤں گی کہ نہیں, اٹھوں گی کہ نہیں, کوئی نہیں آتا. سچی بات ہے, کوئی نہیں آتا. علامہ بسم کا موت ہوا یا پڑھیں تو شاید دل میں, اچھا موت سے اٹھے ہیں, دیٹس اٹ. لیکن آپ سوچئے, ہم روز موت کے بستر سے اٹھتے ہیں. ہاں جہاز میں جائیں تو ڈر آتا ہے شاید نہ ہو, کشتی میں جا کہتے پتہ نہیں بچنا ہے کہ نہیں, ایون ہمیں تو اپنی ان گاڑیوں پہ بیٹھ کے بھی ڈر نہیں آتا. کتنی موتوں کے بیچ میں سے ہماری گاڑی آتی ہے, एक गाड़ी के इर्द गिर्द कितनी गाड़ियां होती हैं, अगर जरा सा आपका इशारा इधर हो या गाड़ी का कोई एक्सल घूम जाए या काम करना छोड़ दे, हम खुद भी मरेंगे दूसरों को भी मारेंगे। ऐसे ही होता है ना, घर से निकलते हैं को यकीन होता है वापस आना है, इतने नहीं डरे हम। अल्लाह कहते हैं तुम रोज मौत में से आते हो, जिसको मैंने मारना होता है उनकी रूह को मैं वापस नहीं आता, वो अल्लाह को भी बहुत ही प्यारे हो जाते हैं, अल्लाह उनकी रूह को अपने पास रखता है, जबकि वह युरसिलुल उखरा इला अजलिन मुसम्मा, और दूसरी को वापस भेज देता है एक वक्ते मुअय्यन तक के लिए, यानी जिसकी जिंदगी मतलूब होती है उसमें वो रूह वापस डाल दी जाती है, और इस तरह हर रोज जीते हैं हर रोज मरते हैं। हमने तो दुखों के नाम पे कहा ना रोज जीते हैं रोज मरते हैं, लेकिन हकीकत है कि हम में से हर एक रोज मौत का जायका चखता है। और जिनको नींद नहीं आती जरा उनसे पूछिए जानकनी की कैफियत है, रात नहीं खत्म होने को आती, कोई रात याद करें ऐसी, कोई ऑपरेशन हुआ था या बीमार थे या कोई परेशानी थी और नींद नहीं आई, अल्लाह ना करे ये कैफियत किसी के ऊपर हो आप में से, लेकिन मैंने सुना है कुछ लोगों को देखा भी है कि वो सारी रात घड़ी देखते रहते हैं और साइडें पलटते रहते हैं, कहते नींद नहीं आती, और एक रात की नींद आना बंदे को सुस्त कर देता है। कई नफीजा निकला या तिलिका उम यतफक्करून, यकीनन इसमें निशानी इन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र से काम लेते हैं। क्या निशानी है कि बताओ जो रब रोज मारने और जीने पे कादिर है, क्या तुम्हारी देवियां और तुम्हारे ये माबूद भी ये काम कर सकते हैं? असल में ये तौहीद सिखाई जा रही है कि जिसको माबूद मानो उसमें ये खूबियां होनी चाहिए कि जब चाहे लोगों की मौत का फैसला कर दे और जब चाहे उनको जिंदगी दे दे। अब एक और दलील, अमित तखजु मिन दूनिल्लाहि शुफा, क्या इन्होंने अल्लाह के सिवा कोई और सिफारशी बना रखे हैं इंटरसेसर्स? قُلْ لَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ, ए नबी आप इनसे कहिए अगरचे इन्हें सिरे से कोई इख्तियारी ना हो और ना ही इन्हें कुछ समझ हो, क्या फिर भी वो तुम्हारी शिफात करेंगे? सिफारिश का शिर्क, तो बता दो قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا, आप कहिए कि शिफात कुल की कुल अल्लाह के इख्तियार में है, क्यामत के दिन जो भी किसी की शिफात करेगा वो अल्लाह की इजाजत से करेगा, फिर किसी सिफारिश का कबूल करना या ना करना सिर्फ उसी के इख्तियार में, किसी की मजाल नहीं है कि अपनी मर्जी से कोई बात अल्लाह से मनवा ले। हम कहते हैं गले में बाहें डाल के अल्लाह को मना लेंगे, बाप को गुस्सा आया हो ना तो उस वक्त सामने नहीं बंदा टिकता, शौहर को गुस्सा आता है जितनी मर्जी मोहब्बत हो, अगर खुदा ना खासा उनको गुस्सा आता है तो आप उनके सामने ठहर सकती हैं? आप कहते हैं पीछे हो जाओ अभी इनको छोड़ दो इनके हाल पे, अल्लाह की जात को जब गुस्सा आया होगा, और हदीस में आता है क्यामत के दिन अल्लाह बहुत गुस्से में होगा। वो तवील रिवायत जो आपको पीछे सुनाई थी शिफात की, उसमें शिफात इसकी नहीं है कि जन्नत या जहन्नम मिले, शिफात इस बात की है कि अल्लाह हिसाब शुरू करा दे, और लोग खड़े हैं खड़े हैं खड़े हैं मैदाने हश्र में, गर्मी पसीने भूख प्यास, खिड़की नहीं खुल रही, सब इंतजार में, यौम यकूमु अन्नासु इला रब्बिल आलमीन, आखिर लोग फिर आएंगे कहेंगे किसी से कहो कि इस अल्लाह से कहें कि हिसाब तो शुरू करें। इमेजिन करें ना पाकिस्तान में गर्मियों की दोपहर है और आप किसी भी सरकारी दफ्तर की खिड़की के पास खड़े हैं, बिल जमा कराने हैं या वीज़े लेने हैं देने, खुली नहीं रही, लोग आदम के पास आएंगे, चलिए आदम जी ज़रा आप अल्लाह ताला से कह दें कि हिसाब शुरू तो करें, जो भी करना कर दें, तो कहेंगे ना 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 मैं नहीं कर सकता, मैंने दरख्त का फल चख लिया था, अगर अल्लाह ने आज मुझसे उसके बारे में पूछ लिया तो मेरा क्या होगा। देखिए वो गुनाह जिसको अल्लाह ने माफ कर दिया, फताब अल्लाहु इलाही के लफ्ज आते हैं, अल्लाह ने माफ कर दिया, उसके बाद रब्बना ज़लमना की बातों को कबूल किया, उसके बाद नबी बनाया सब किया, लेकिन आदम कहते ना 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 अल्लाह फिर ना पूछ ले। कभी ऐसा होता है ना, आमतौर पे बंदा आपको माफ कर चुका होता है भूल चुके होते हैं, लेकिन दोबारा कभी गुस्सा आए तो फिर लोग पुरानी बातें याद करने आ जाते हैं, वही हो ना जो तुमने तब भी किया था, है ना ऐसी बात। आदम इब्राहिम और मूसा और ईसा सब नबी उस दिन थर थर कांप रहे होंगे कि हम नहीं जाते अल्लाह के पास, हमें अपना वो एक दो गुना याद आता है। इब्राहिम कहेंगे मैंने अपने बाप के लिए दुआ करती थी, मैंने झूठ बोल दिया था तौरिया के तौर पर, मैं नहीं जाता, हालांकि कितनी बातें हैं, फलम्मा अस्लमा वतल्लाहु लिल्जबीन, वो जिनकी जिक्रों से कुरान भरा पड़ा है वो क्यामत के दिन कांप रहे हैं। और मूसा का ना जी ना मैं तो नहीं कर सकता, मेरे मुक्के से एक शख्स मारा गया था, अल्लाह ना पूछ ले आज। और ईसा कहेंगे मेरी कौम ने मुझे खुदा बना लिया था, मैं नहीं जाता अल्लाह के पास, तुम सारे जाते हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाओ और उनसे कहो कि वो सिफारिश करें। वहां तो इतना अल्लाह उस दिन गुस्से में होंगे, नफसी नफसी की पुकार होगी क्यामत के दिन। कोई मजाक तो नहीं है, खेल तो नहीं है अल्लाह से बात करना। नमाज में नहीं बात कर पाते अल्लाह से, तो वहां जाके कहाँ करेंगे। यहां भी बात करते वक्त तवज्जो बतनी हमारी कहाँ होती है। तो कुलिल्लाहि शफातु जमीयन, सारी सिफारिश कुल की कुल अल्लाह की है। जो करेगा, जिसकी करेगा, जिसकी कबूल होगी वो अल्लाह के हुक्म से होगी। किसी की मजाल नहीं कि अपनी मर्जी से कोई बात अल्लाह के सामने रखे, क्योंकि लहू मुल्कु समावाती वल अर्दी, उसी की है बादशाहत आसमानों जमीन में। तुम इलैहि तुरजाउन, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। तो सारी तख्तियां फाड़ दें सिफारिशों के नाम की। आज जहालत से जो शिर्क फैलता है उसमें बहुत बड़ा शिर्क सिफारिश का शिर्क है। ये बाबा जी हैं, ये हमारी करेंगे। आपको एक क्लिप दिखाया था कि एक अम्मा है और किसी बड़ी सी कब्र के साथ बैठी हुई है। अम्मा जी ये कौन है? ये बाबा जी थे। ये इतनी बड़ी कब्र क्यों है? वो कह गए थे मेरा सामान, मेरा डबल बेड सारा अंदर ही दफन कर देना। तो अम्मा जी ये नमाज पढ़ते थे, असी तो कोई नहीं वेख्या इन्हां नूं पढ़दे आ, और उन्होंने तो जरूरत ही कोई नहीं सी। तो तुसी इत्थे क्यों बैठे हो? वो पहुंचे हुए हो अल्लाह दे अगे, साडी मदद करनगे, सिफारिश करनगे। आज जहालत का ये शिर्क आम है हमारे सामने, इसलिए एक इंसान अपनी फिक्र कर ले। एक झटका तो क्यामत के दिन आना ही है। अल्लाह हमें उस वक्त इस्तकामत दे दे। हर बंदे को ये लग रहा होगा कि आज मैं पकड़ा गया, आज मैं फंस गया, आज मैं नहीं बच के जा सकता। हदीसें आगे जाके सुनाऊंगी आपको इंशाल्लाह कहीं कि नहीं, अल्लाह आज मैं नहीं बच सकता, आज तो गया तो गया। फिर बाद में चाहे जन्नत मिल जाए, यकीन ही नहीं आएगा जन्नत में जाने के बाद भी कि क्या वाकई जन्नत में पहुंच गए। दुनिया में भी तो कई ऐसे काम होते हैं ना। और आप देखिए कि ये यहां बात नहीं आई, चंद आयतों के नंबर नोट कीजिए जहां ये सिफारिश का मौजू कुरान में हम पढ़ चुके हैं। सूरत बकरा की आयत 281, सूरत अल अनाम 32, इसी तरह सूरत यूनस, सूरत हूद, सूरत रात, सूरत नहल, सूरत तौहा, सूरत अंबिया, हज और सूरत सबा। इनमें मुख्तलिफ जगह पे ज्यादा बोझल बात नहीं करना चाहती, इसलिए आप खुद भी इसको सर्च कर सकते हैं कि किस तरह से क्यामत के दिन होगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह के ऊपर नजरें हमारी लग जाएं। अब आयत 45 में मुशरकीन का एक और रवैया, पहले इसको सुन ले फिर आगे बात करेंगे। व इजा जुकिर अल्लाह वहदहू, और जब जिक्र किया जाता है अल्लाह अकेले का, यानी जब कहा जाता है सिर्फ अल्लाह से मांगो, सिर्फ अल्लाह को पुकारो, तो क्या होता है? इश्मज़त कुलूबुल्लज़ीना ला यूमिनून बिल आखिरा, तो कुड़ने लगते हैं उन लोगों के दिल जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते। ये कौन है? अगर असूलन देखें तो इससे मुराद कुफार हैं। जब उनको कहा जाता है सिर्फ रब को पुकारो, कहते हैं ये कैसे हो सकता है, बाबा जी को ना पुकारें। और हर दौर के लोग इसी पे बात करते हैं। जब उनको एक अल्लाह से मांगने की बात की जाए तो बुरा मनाते हैं। हाँ, वह इजाज़ु की रल्लज़ीन मिन दूनी ही, जब जिक्र किया जाता है उनके सामने उसके सिवारों का भी, इजाहुम यस्तबशीरून, तो वो खुश हो जाते हैं। फिर उनको बड़ा मजा आता है, कहते हैं हाँ जी, ये औरों से भी मांगते हैं, किसी और से भी मांगते हैं, किसी और के साथ भी बात करते हैं। और अगर सिर्फ एक अल्लाह से मांगने की बात की जाए, कहते हैं कि छोड़ो जी, ये तो वहाबी हैं। और इनको ऐसे लगता है कि ये बातें करके ये लोग हमें हमारे खुदाओं और हमारे बुतों से दूर करने लगते हैं। और ऐसे महसूस होता है कि ये उस वक्त खुद को इन्हीं के हाथों में पाते हैं। इसके ऊपर एक वाक्या भी आता है, रिवायत है, सुना देती हूँ आपको कि किस तरह से ऐसे लोग इस तरह के काम करते हैं। तफसीर रूहुल मानी अरबी की, अलामा आलूसी की, वो लिखते हैं इसके बारे में अपना एक तजुर्बा। कहते हैं कि एक रोज मैंने देखा कि एक शख्स अपनी किसी मुसीबत में एक फौतशुदा बुजुर्ग को मदद के लिए पुकार रहा था, जैसे लोग मांगते हैं कब्रों पे जाके। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, अल्लाह को पुकार, वो तो खुद फरमाता है कि वह इजा साल कई वादी अन्नी फनी करीब, जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दें कि मैं करीब हूँ। उजीब उदा व तदाईजादानी, जवाब देता हूँ पुकारने वाले की पुकार का जब वो पुकार देता है। कहते मैंने उसको कुरान की आयत बताई, मेरी ये बात सुनकर इसे सख्त गुस्सा आया, और बाद में लोगों ने मुझे बताया कि वो कहता है कि ये शख्स औलिया का मुनकर है, ये वलियों को नहीं मानते। आपने सुनी होगी बात। और इसी तरह बास लोगों ने इसको ये कहते हुए भी सुना कि अल्लाह की निस्बत वली जल्दी सुन लेते हैं। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह, यानी अकेले अल्लाह का नाम सुनकर चेहरे बिगड़ते हैं। और जब पुकारा जाए इधर उधर की, जरा उधर चले जाओ करनी वाले और दाता और हजवेरी और गौसे पाक और फुला, तो यस्तबशिरून, आज भी देखिए वही बात है, वो एक सजदा जिससे तू गिरान समझता है। इंसान एक रब का नहीं बनता, फिर दर दर से जाता है खाता है। आप देखिए जैसे मिसाल दी थी ना, शौहर से ले लिया तो मुतमईन है, तो अगर शौहर से नहीं लेना या आप अकड़ में आ गए तो फिर कभी इससे मांगेंगी कभी उससे मांगेंगी, और जिससे मांगेंगी वो दिल में आपसे नाराज ही होगा कि ये इसको क्या हुआ, शौहर वाली होते हुए खाती पीती है, अच्छे भला है इसका शौहर, तो फिर दूसरों से मांगती है। कई दफा जो मासियां बहुत मांगे तो लोग कहते हैं ना, लो अच्छे भले इनके शौहर सब कुछ है, बस इनको अब मांगने की आदत पड़ गई है। तो अल्लाह ताला कहते हैं قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, आप कहिए अल्लाह आसमान और जमीन के पैदा करने वाले, गायब और हाजिर के जानने वाले, अंत तहकुमु बैना इबादिक फीमा कानू फीही यख्तलिफून, यकीनन आप फैसला करेंगे अपने उन बंदों के दरमियान उन चीजों में जिनमें वो इख्तलाफ करते रहे हैं। ये है वो आयत या दुआ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में पढ़ा करते थे, कुलिल्लाहुम्मा फातिरस समावाती वल अर्द। सही मुस्लिम की रिवायत अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहते हैं कि हजरत आयशा से पूछा कि अल्लाह के नबी रात की नमाज यानी तहज्जुद को किस चीज से शुरू करते थे, तो आपने कहा कि आप तहज्जुद की नमाज में ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा रब्ब जिब्रील व मीकाईल व इसराफीला فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم। यकीनन आप लोगों को दुआ ये जुबानी आती होगी क्योंकि आप जुबानी पढ़ते होंगे ना, देख के तो नहीं पढ़ेंगे ना। इसी तरह सैयद बिन जुबैर से एक रिवायत है, कहते हैं मुझे कुरान पाक की एक ऐसी आयत मालूम है, इसको पढ़कर जब आदमी कोई दुआ करता है तो कबूल होती है। फिर यही आयत पढ़ी, अल्लाहुम्मा फातिरस समावाती वल अर्द, कितनी खूबसूरत दुआ है। और आप देखिए तहज्जुद के या रात के अंधेरों में आप ये दुआ पढ़ते हैं तो सारे मुकदमे आ जाते हैं जो लोग दीन या दुनिया के नाम पे आप पे रखते हैं, तो आप कहते हैं अल्लाह तू जान मैं तो इनसे नहीं निपटती, फिर आप अल्लाह पे बात डाल के मुतमईन होते हैं, किसी को मेरे बारे में गलत फहमी है, कोई मुझे बुरा समझता है, अंत तक मुबैन इबादिक, तू जान तेरे बंदे मैं बीच में नहीं आती।